पृष्ठ संख्या 435। मिलन स्थान शिव मंदिर। भारतीय साहित्य में नायक नायिकाओं के मिलन के लिए देवालय विशेषकर शिव मंदिर की कल्पना की गई है। पर्दा प्रथा की कठोरता के कारण तथा अपनी कुल मर्यादा के अनुरूप राजकन्याएं बहुधा अपने निवास स्थानों की चार दीवारी ही में रहती थीं। प्रायः देव उत्सवों के समय उन्हें अट्टालिकाओं से बाहर निकलने का अवसर प्राप्त होता था। हमारे कवियों ने ऐसे ही शुभ पर्वों को प्रमुख पात्र पात्रिकाओं के मिलन के लिए उपयुक्त समझकर अपने काव्यों में इस कथानक रूढ़ी का विधान किया है। हिंदी साहित्य के कई सूफी कवियों ने भी इस रूढ़ी को प्रश्रय दिया है। पद्मावत में हीरा मन के नेतृत्व में रत्नसेन अपने जोगी संप्रदाय सहित महादेव के मंदिर में प्रवेश करता है। वह पद्मावती के ध्यान में अंतर्लीन हो जाता है। हीरा मन पद्मावती से भेंट के लिए जाते समय रत्नसेन को सूचित करता है कि बसंत पंचमी के दिन पद्मावती इसी महादेव के मंडप में बसंत पूजा करने के लिए जाएगी। हीरा मन पद्मावती के पास पहुंचकर रत्नसेन के रूप, कुल, ऐश्वर्य, तेज आदि की प्रशंसा के पुल बांधता है। पद्मावती वसंत पंचमी के दिन पूजा के बहाने राजा के दर्शन करने का वचन देती है। सुआ यह शुभ समाचार लेकर राजा के पास मंडप में लौट आता है। अतः श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए मंदिर में जाती है और वहां रत्नसेन और पद्मावती का प्रथम साक्षात्कार होता है। इस प्रकार यह मिलन उस प्राचीन भारतीय कथानक रूढ़ी की ओर संकेत करता है, जिसमें प्रायः किसी देवालय में प्रमुख पात्र पात्रिकाओं का मिलन होता है। उस्मान कृत चित्रावली में चित्रावली और सुजान के प्रथम मिलन का विधान शिव मंदिर में किया गया है। कुमार का चित्र देखकर चित्रावली पृष्ठ संख्या 436 मोहित हो जाती है। वह उसे ढूंढने के लिए अपने नपुंसक भृत्यों को भेजती है। इसी बीच एक कुटीचर चित्रावली की माता हीरा से शिकायत कर देता है, जिससे वह कुमार सुजान का चित्र धुलवा देती है। इस अपराध में कुमारी कुटीचर का सिर मुड़वा कर उसे राज्य से निकलवा देती है। वह अपने चार भृत्यों को कुमार की खोज में भेज देती है। उनमें से परेवा नामक एक भृत्य कुमार को रूपनगर में लाकर युक्ति से शिवालय में चित्रावली से साक्षात्कार करवा देता है। जल क्रीड़ा। हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में मानसरोवर में जल क्रीड़ा की रूढ़ी का बहुत प्रयोग हुआ है। प्रायः सभी सूफी कवियों ने मानसरोवर का चित्रण किया है। मृगावती में मृग के रूप में आई हुई मृगावती मानसरोवर में अंतर्धान होती है। फिर एकादशी को उसी मानसरोवर में अपनी सखी परियों के साथ वह स्नान करने आती है। पद्मावत में पूर्णिमा तिथि के दिन पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए आती है। वह अपनी संपूर्ण सखियों को बुलाती है। वे सब मिलकर एक वाटिका के समान प्रतीत होती हैं। सब अपनी कंचुकियां और साड़ियां उतारकर सरोवर के तट पर रखती हैं और जल में प्रवेश करके किलोले करने लगती हैं। पद्मावती चंद्रमा के समान तारका रूपी सखियों के बीच में अत्यधिक लावण्यमयी प्रतीत होती है। वह तो दूसरा चांद प्रतीत होती है। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निसी सरग मह दिन दूसर जल माह। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 24। वे जल क्रीड़ाएं करने लगी। उनको देखकर हंस भी लज्जित होकर किनारे पर बैठ गए। लागी केली करे मजनीर, हंस लजाई बैठ ओहि तीरा। जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 24। पृष्ठ संख्या 437। जायसी ने जल क्रीड़ा के प्रसंग में मायके की स्वच्छंदता का उल्लेख भी किया है। ए रानी मन देखो बिचारी, एहि नहर रहना दिनचारी। जो लगी अह पिता कर राजू, खेली लेहु जो खेलहु आजू। पुनि सासुर हम गवनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। कित आवन पुनि अपने हाथा, कित मिलिके खेलब एक साथा। वही पृष्ठ 23। जायसी ने जल क्रीड़ा के वर्णन में आत्मा परमात्मा के मिलन की भी चर्चा की है। मानसरोधक प्रतीक है जीवात्मा का और पद्मावती परमात्मा की। मिलनोपरांत जीवात्मा के पाप विनष्ट हो गए। कहा मानसर चाह सोपाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गय तपनी बुझाई। न जनाव कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गवावा। वही पृष्ठ 25। इस प्रकार जायसी की भांति अन्य सूफी कवियों ने भी जल क्रीड़ा का वर्णन सूफी काव्यों में किया है। इस प्रसंग का उद्देश्य नायिका का सौंदर्य चित्रण करना, मायके की स्वच्छंदता प्रदर्शित करना एवं आत्मा परमात्मा की खोज, मिलन आदि के रूपक का स्पष्टीकरण होता है। कवि उस्मान ने जल क्रीड़ा के वर्णन में नायिका की सुंदरता तथा आत्मा के द्वारा परमात्मा की खोज का रूपक स्पष्ट किया है। चित्रावली तथा उसकी सखियों के सौंदर्य के विषय में कवि लिखता है, तीर धरिन सब चीर उतारी, धाई धंसी सब नीर मंझारी, कनक लता फैली सब बारी, पुरैनी तोर जान जल डारी, मानहु शशि संग सरग तराई, केली करत अति लाग सुहाई, हंस देखी जलहर तज गए, पदम सबै दिन कुमुदिनी भय, आई चकोर देखी मुख रहा, सरवर नाही गगन सब कहा, भूले गगन अचक रहे तहां, अब निसी नशत कह ही दिन कहां। उस्मान चित्रावली, काशी नागरी प्रचारणी सभा, सन 1912 ईस्वी, पृष्ठ 47, पृष्ठ संख्या 438। कवि उस्मान ने मानसरोवर के वर्णन में आत्मा परमात्मा की खोज का रूपक इस प्रकार निभाहा है, सरोवर ढूंढी सबै पची रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भई बैरागी, धरी ध्यान सब बिनवै लागी, गुप्त तो ही पावही का जानी, परगट मह जो रह ही छपानी, चतुरानन पड़ी चारो वेदु, रहा खोजी पै नाव न भेदु, शंकर पुनि हारे कै सेवा, वाहि न मिलऊ और को देवा, हम अंधी जही आपुन सूझा, भेद तुहार कहाँ लो बुझा, कौन सो ठाऊं जहाँ तुम नाही, हम चशु ज्योति न देख ही काही, पावे खोज तुम्हार सो जेहि देखलावहु पंथ, कहा होई जोगी भय और पुन पढ़े ग्रंथ। वही पृष्ठ 47-48। हंस जवाहिर में कवि कासिम शाह का उद्देश्य केवल जवाहिर के रूप सौंदर्य और मायके की स्वच्छंदता का प्रदर्शन करना ही है। कवि मायके की स्वच्छंदता के विषय में कहता है, भोर कहाँ आवो फुलवारी, जब सब जाब गवन ससुरारी, खेल लेब जो खेलब गोरी, जब लग रहो पिता घर मोरी। कासिम शाह, हंस जवाहिर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1937 ईस्वी, पृष्ठ 36। तथा सब अबला ओ बारी मोरी, खेलें खेल जो सांवर गोरी, कौतुक खेल करे जल माही, काली लट ऊपर पैराही। वही पृष्ठ 36। सखियों के साथ जाती हुई जवाहिर के सौंदर्य को देखकर पक्षीगण आश्चर्यचकित रह जाते हैं। चला चंद फुलवार ज्यों, लिए नखत सब नार, पंख देखी झुलान सुधी, रहिगे पंख पसार। वही पृष्ठ 34, पृष्ठ संख्या 439। शशिवदन जवाहिर सुंदरता की साकार प्रतिमा है। जब वह तट पर खड़ी होती है तो लहरें भी उसके रूप की ओर आकृष्ट होती हैं और उसके चरण स्पर्श के लिए आगे बढ़ती हैं। तहां ठाड़ शशि कमल शरीरा, लहरें ले लाग जल तीरा, हुलसी नीर जो लहर उठावे, उमड़े चरण चहू का धावे। वही पृष्ठ 34। नूर मोहम्मद की इंद्रावती के नहान खंड में कवि ने इंद्रावती की सुंदरता और मायके की स्वच्छंदता का वर्णन किया है। सरोवर में प्रविष्ट इंद्रावती के सौंदर्य वर्णन में कवि पूर्ण सफल हुआ है। अब जूरा इंद्रावती छोरा, भयउ घटा मो चांद अंजोरा, बैठी हूँ अब जल भीतर रानी, पानी पायउ तारा पानी, झूलना झूले हूँ करत नहानु, लहकी चहेउ चुंबे अधिरानु, लखी नथ मोती की अमलाई, शुक्र छपाना आप लजाई, मनु तारा भा गगन समानु, भयउ मयंक समा वर प्राणु, सूरज उआ आकाश ही, चंद उआ जल माह, कुमुद तामरस फूले, दो मित्र के पाह। नूर मोहम्मद इंद्रावती, पहला भाग, पृष्ठ 90। संक्षेप में, सुंदरता के समस्त लक्षण इंद्रावती में वर्तमान हैं। सुंदरता को लक्षण जेते, प्यारी चेरे तेरे तेते। वही पृष्ठ 91। मायके की स्वच्छंदता और उससे बिछुड़ने के संबंध में भी कवि ने लिखा है, सकल सखिन सो मरम छिपावा, आना ही भांति की बात सुनावा, वह दिन समुझ सखी मैं रोई, जा दिन नैहर बिछुरन होई, बिछुरहु तुम सब सखी सहेली, सब अलबेली रूप अलबेली, मिले कहाँ तुम समा प्यारी, कहाँ अलबेली कहाँ फुलवारी। वही पृष्ठ 93, पृष्ठ संख्या 440। सूफी कवि हुसैन अली कृत पुहपावती में जल क्रीड़ा का वर्णन करते समय कवि मातृगृह की स्वच्छंदता, पुहपावती के सौंदर्य एवं उसके परमात्मा स्वरूप का परिचय देता है। डॉक्टर सरला शुक्ल, जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य, लखनऊ, संवत 2013 विक्रम, पृष्ठ 502। नायक का नायिका से भिन्न किसी युवती की रक्षा करना। भारतीय कथा साहित्य में इस कथानक रूढ़ी का सुंदर रूपेण विनियोजन किया गया है। कुछ हिंदी सूफी प्रेमाख्यानों में व्यवहित उपर्युक्त कथानक रूढ़ी का प्रयोग अत्यंत चारुता से किया गया है। मृगावती में राजकुंवर राजा देवराय की कन्या रूपमिनी की रक्षा एक राक्षस से करता है। कुतुबन कृत मृगावती प्रयाग शक 1885 पृष्ठ 98। मधुमालती में कुमार मनोहर चित विसराव नगर के राजा चित्रसेन की कन्या प्रेमा की रक्षा एक राक्षस से करता है। संक्षेप में यह घटना इस प्रकार है कि जब कुमार मधुमालती की खोज में दल तथा परिग्रह के साथ चल पड़ता है तो चलते चलते वे सब समुद्र तट पर पहुंचते हैं। कुमार सबको लेकर जलयान पर सवार होता है। जलयान भंवर में जा पड़ता है और वह टूक टूक हो जाता है। कुमार अकेला ही किसी प्रकार बच निकलता है और एक घने वन में पहुंच जाता है। वहां चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर एक चौखंडी होती है। उस चौखंडी के भीतर जाने पर वह शैया पर एक कुमारी को सोया हुआ पाता है। यह कुमारी प्रेमा होती है। जाने पर कुमारी बताती है कि एक राक्षस उसे उठाकर यहाँ लाया है। राक्षस का नाम सुनकर कुमार चलने लगता है, परंतु प्रेमा उसके चरणों पर गिर पड़ती है और रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। अंत में कुमार और राक्षस में द्वंद्व युद्ध होता है। वह राक्षस को ठिकाने लगाता है और प्रेमा को राक्षस के पंजे से मुक्त कराता है। पृष्ठ संख्या 441। जौ राक्षस निजु तजे पराना, पैमा देखी जीव रहसाना, दौरी कुमार पर आचर वारा, अति मरोह लय हिय उरसारा, कहे सी कहा नेउछावरी सारों, सहस जीव घट हो ही तो घारों, धनी सो पिता जेई रे ताही जाए, धनी सो माई जेई दूध पियाए। मंझन कृत मधुमालती इलाहाबाद सन 1961 छंद 276 पृष्ठ 234। एक, भावी सौत की चिंता तथा किसी पक्षी को मरवा डालने का प्रयत्न। दो, सौतिया डाह। जायसी ने पद्मावत के काव्य सौंदर्य वर्धन के लिए उपर्युक्त दोनों रूढ़ियों का अत्यंत सुंदर और स्वाभाविक प्रयोग किया है। प्रथम रूढ़ी के आश्रय पर नागमती सुआ संवाद खंड जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 38-40 की योजना की गई है। इस खंड में हीरामन को मरवा डालने का असफल प्रयास है। यहाँ हीरामन शुक नागमती के लिए भावी सौत की आशंका का पात्र है, अतएव वह अपनी एक दासी से उसको मार डालने के लिए कहती है, किंतु दासी की चतुराई एवं कृपा से शुक के प्राण बच जाते हैं। इस कथानक रूढ़ी के अतिरिक्त पद्मावतकार ने द्वितीय रूढ़ी सौतिया डाह के मार्मिक प्रसंग का भी विधान किया है। अंततः रत्नसेन की सूझबूझ से नागमती एवं पद्मावती में झगड़ा पाक हो जाता है। ये रूढ़ियां पद्मावत की कथा में स्वतः स्वाभाविक रूप में आई हैं। निस्संदेह इन रूढ़ियों ने पद्मावत को लोक और काव्य का गंगा जमनी बना दिया है। ऐसे प्रसंगों को दृष्टि में रखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, जायसी ने यद्यपि इश्क के दास्तान वाली मसनवियों के प्रेम के स्वरूप को प्रधान रखा है, पर बीच बीच में भारत के लोक व्यवहार संलग्न स्वरूप का भी मेल किया है। इश्क की मसनवियों के समान पद्मावत लोक पक्ष शून्य नहीं है। जायसी ग्रंथावली पद्मावत भूमिका पृष्ठ 30। इसमें भावात्मक और व्यवहारात्मक दोनों शैलियों का मेल है। पृष्ठ संख्या 442। नायक का दो पत्नियों का होना एवं उन दोनों का नायक की मृत्यु पर सती हो जाना। हिंदी के सूफी कवियों ने प्रायः इस कथानक रूढ़ी का पालन किया है। मृगावती पद्मावत इंद्रावती में नायक की दोनों पत्नियों के सती होने का वर्णन है। मंझन एवं उस्मान ने इसमें व्यतिक्रम किया है। वे लिखते हैं, क उत्पत्ति जग जेती चली आई, पुरख मारी ब्रज सती कराई, मैं छोहन एहि मारी न पारेऊं, सही मरही जे कली अवतारेऊं। मंझन कृत मधुमालती वाराणसी पृष्ठ 164। ख कवितन सरन कथा के गाई, मोहि मरत हिय लागु छुहाई, औजे प्रेम अमी रस पिया, मरे न मारे जुग जुग जिया। चित्रावली काशी नागरी प्रचारणी सभा पृष्ठ 236। कुटनी प्रसंग। कुटनी की कथानक रूढ़ी भी भारतीय साहित्य में सुपरिचित है। कुटनी प्रसंग लाकर कवि नायिकाओं के सतीत्व की परीक्षा कराते हैं और सब समय वे खरी उतरती हैं और अपने धर्म पर अटल रहती हैं। यथा पद्मावत में पद्मावती के चरित्र को अत्यंत उज्ज्वल रूप में दिखाया गया है। उसे देवपाल की दूती बहकाने का प्रयत्न करती है, परंतु सफलीभूत नहीं होती। पद्मावती अपने सतीत्व पर अटल रहती है। षट ऋतु एवं बारह मासा। प्राचीन काल से ही विरही पर ऋतु का प्रभाव तथा ऋतु परिवर्तन का निरूपण काव्य में स्थान स्थान पर होता रहा है। अपभ्रंश में ऋतु ही नहीं, पास पास के बदलते हुए परिवर्तन को भी देखा गया है। विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चतुष्पादिका में 12 मासे का प्रथम उल्लेख मिलता है। डॉक्टर मधु मालती सिंह, आधुनिक हिंदी काव्य में विरह भावना, दिल्ली, सन 1963 ईस्वी, पृष्ठ 99। हिंदी में अपभ्रंश की इस कथानक रूढ़ी का खूब प्रचलन हुआ और अनेक बारहमासे लिखे गए। पृष्ठ संख्या 443। सूफियों की साधना में विरह का बहुत महत्व है। यही कारण है कि सूफी प्रेमाख्यानों में विरह या वियोग का वर्णन प्रचुरता से मिलता है। प्रेम की पीड़ से भरे ये कवि प्रेम की तीव्रता ही चित्रित करने का प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, इलाहाबाद, सन 1962, पृष्ठ 322। प्रायः सभी सूफी प्रेमाख्यानों में विरह की तीव्रता प्रकट करने के लिए बारह मासे का समावेश हुआ है। मृगावती में विरह विधुरा रूपमिनी बंजारों की टोली से अपना संदेश कहती है और इसमें अपने 12 महीनों की विरह व्यथा सुनाती है। 12 मासा श्रावण से आरंभ होता है। पद्मावत में नागमती का विरह उभारने के लिए जायसी ने 12 मासे का वर्णन किया है। 12 मासा आषाढ़ से प्रारंभ होकर जेठ तक चलता है। हिंदी काव्य जगत में नागमती की विरह वेदना अद्वितीय है। पद्मावत में शरद ऋतु वर्णन भी हुआ है। मधुमालती में मंजन ने भी विरह वर्णन के अंतर्गत 12 मासा की पद्धति का अनुकरण किया है। 12 मासा आषाढ़ से प्रारंभ न करके श्रावण से आरंभ किया गया है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने ठीक ही लिखा है कि मंजन की मधुमालती का 12 मासा कमजोर है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य, इलाहाबाद, सन 1962 ईस्वी, पृष्ठ 314। अन्य सूफी कवियों की भांति कवि उस्मान का मन भी विरह वर्णन में अधिक रमा है। चित्रावली में चित्रावली सुजान के यहाँ पत्र भेजती है जिसमें वह अपनी विरह वेदना निवेदन करती है। 12 मासा चैत से आरंभ होता है। ग्रंथ में षट ऋतु वर्णन भी हुआ है। ज्ञानदीप में भी देवजानी के विरह का कष्ट दिखाने के लिए 12 मासा की चर्चा की गई है। 12 मासा का आरंभ कवि ने आषाढ़ मास से किया है। प्रकृति के जो उपकरण संयोगियों को सुखद होते हैं वही देवजानी की व्यथा को तीव्र करते हैं। पृष्ठ संख्या 444। हंस जवाहिर में जवाहिर का विरह प्रदर्शित करने के लिए कवि ने 12 मासा की परंपरा का पालन भी किया है। प्रिय के वियोग में आश्रयहीनता एवं दुख कातरता का भाव इसमें पूर्णतः व्यंजित है। इंद्रावती में 12 मासे का वर्णन कवि नूर मोहम्मद ने संयोग एवं वियोग दोनों ही श्रृंगार भावनाओं के उद्दीपन रूप में किया है। एक ओर कवि राजकुंवर एवं इंद्रावती के सुखद मिलन में प्रकृति को सहयोग देता हुआ चित्रित करता है और दूसरी ओर राजकुंवर की पूर्व पत्नी सुंदर को वियोग पीड़ित चित्रित करती है। कवि निसार ने यूसुफ जुलेखा में शरद ऋतु तथा 12 मासे की चर्चा की है। निसार इसमें अधिक सफल नहीं हो सके हैं। ऐसा ज्ञात होता है कि वे केवल एक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। भाषा प्रेम रस में चंद्रकला को महाकाल नामक दैत्य उड़ा ले जाता है। वहां वह प्रेम सेन से वियुक्त होने तथा दैत्य की भयंकरता के कारण अत्यंत वेदना का अनुभव करती है। यही प्रसंगवश कवि ने विरह वर्णन के अंतर्गत परंपरागत 12 मासा का वर्णन किया है जिसमें किसी प्रकार की नवीनता नहीं है। ग फारसी सूफी काव्य में प्रयुक्त कतिपय विशिष्ट व्यक्तिगत कथानक रूढ़ियाँ। अब हम उन कथानक रूढ़ियों की चर्चा करेंगे जो केवल फारसी अदब की सरमाया है। पुरुष का पुरुष के प्रति प्रेम, यह फारसी साहित्य की व्यक्तिगत रूढ़ी है। इसके फारसी साहित्य में अनेकानेक उदाहरण उपलब्ध हैं। फारसी सूफी काव्य में भी इस रूढ़ी का बहुत प्रयोग हुआ है। ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार कृत मंतिक उत्तैर में उपर्युक्त कथानक रूढ़ी विषयक कई कथाएं हैं जिनमें इसका सफल एवं स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। निम्न कथा में एक पुरुष दूसरे पुरुष पर मुग्ध होता है। पृष्ठ संख्या 445। एक पुरुष जौ की शराब बेचने वाले चांद से सुंदर लड़के पर विमोहित हो गया और उसके प्रेम में घुल घुल कर मरने लगा। उसके आंसुओं का तार बंध गया, नींद उड़ गई और खाना खाने की सुध बिसर गई। पेट पीठ एक हो गया। उसके पास जो कुछ भी धन संपत्ति थी उसकी लड़के के शराब से खरीद ली। जब उसने सब कुछ उड़ा दिया तो फकीर हो गया। इससे इश्क जोर पकड़ गया। यद्यपि सब लोग उसे रोटी देते थे परंतु वह भूखा रहता था। वह उन रोटियों को भी बेचकर जौ की शराब खरीद लेता था। एक व्यक्ति ने कहा, ए दुख के मारे प्रेमी, प्रेम और जौ की शराब में क्या संबंध है, मुझे यह रहस्य बता। उसने उत्तर दिया कि जौ की शराब ही आध्यात्मिक प्रेम है जिसके लिए प्राणी सैकड़ों लोगों को बेचने के लिए तत्पर रहता है। वह भूखा रहता है ताकि जौ की शराब खरीद ले। फिर उसने कहा, ता चुनी कारे निफूदत मर्द रा, ऊचे दानद इश्क रा ओ दर्द रा। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंतिक उत्तैर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 227। अर्थात जब तक प्राणी पर मुसीबत नहीं पड़ती वह प्रेम और प्रेम की पीड़ से परिचित नहीं हो सकता। इसके पाने के लिए कष्टों का सहन करना अनिवार्य है। बादशाह का गुलाम के प्रति प्रेम, फारसी साहित्य की व्यक्तिगत प्रस्तुत रूढ़ी विषयक सूफी कवि ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार की निम्न कथा द्रष्टव्य है। सुल्तान महमूद अपने नमकीन गुलाम अयास पर जान छिड़कता था। एक बार गुलाम अस्वस्थ हो गया, अतएव वह दरबार में कई दिन उपस्थित होने में असमर्थ रहा। जब सुल्तान को उसके रोग की सूचना मिली, पृष्ठ संख्या 446, तो अपने एक सेवक को बुलाया और कहा कि अयास से जाकर यह संदेश दो, ए मेरे बीमार बादशाह, मैं तुझसे दूर हूँ परंतु तेरे रोग के कारण मैं भी रुग्ण हूँ। मैं तुझसे दूर हूँ परंतु मेरी जान तेरे पास है। मैं प्रतिपल तुझे याद करता रहता हूँ। संभवतः मेरी नज़र तुझे लग गई है, इसलिए तू रोगग्रस्त है। सुल्तान ने अपने सेवक को आदेश दिया कि मेरे संदेश को देखते ही देखते अयास तक पहुँचा और उसका उत्तर ला। यदि तू मार्ग में कहीं पल भर के लिए भी रुकेगा तो तेरा काम तमाम कर दिया जाएगा। अत्यधिक भयभीत सेवक हवा की भांति अयास के द्वार पर पहुंचा, परंतु जब सुल्तान को पहले ही अयास के पास बैठे हुए देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। बेचारा संदेशवाहक मारे डर के थर थर कांपने लगा और उसको अपनी जान के लाले पड़ गए। मौत के पसीने के साथ उसने कहा, ए बादशाह सलामत, क्या आप मुझे सूली पर चढ़ा देंगे? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं मार्ग में न कहीं ठहरा हूँ और न कहीं बैठा हूँ। समझ नहीं सकता कि आप मुझसे पहले यहाँ कैसे पधारे। हे अन्नदाता, यदि मेरी भूल हो तो मैं काफिर हो जाऊँ, मुझे कहीं पनाह न मिले। बादशाह ने कहा कि इसमें तेरा कोई दोष नहीं है, भला तू प्रेमी सा कैसे उड़ सकता है। मैंने यह मार्ग तुझसे अधिक द्रुत गति से तय किया क्योंकि मैं अधीर था। बिना आयास के मुझे पल भर भी चैन न था। बादशाह पर किसी साधारण व्यक्ति का आसक्त होना। इस कथानक रूढ़ी संबंधी फारसी सूफी कवि ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार की अधोलिखित कथा देखिए। मिस्र में एक महान बादशाह पर कोई निर्धन आसक्त हो गया। जब उसके प्रेम का समाचार बादशाह के कान तक पहुंचा, तो उसने उसी समय उस व्यक्ति को बुलाया। उसने इस प्रकार उसे संबोधित करते हुए कहा कि यदि तू बादशाह के प्रेम का दम भरता है तो इन दो कामों में से एक देखते ही देखते कर, या तो इसी समय तो इस नगर से बाहर निकल जा या अपना सिर कटा ले। चूंकि वह सच्चा प्रेमी था, इसलिए उसने नगर से निकलना पसंद किया। इस पर बादशाह ने आदेश दिया कि उसका सिर धड़ से अलग कर दो। पृष्ठ संख्या 447। मंत्री ने कहा, ए बादशाह, वह व्यक्ति तो नितांत निर्दोष था, आपने उसका सिर उड़ा देने का क्यों आदेश दिया? बादशाह ने फरमाया, वस्तुतः वह प्रेमी न था और प्रेम पथ में सच्चा न था, अतः ऐसे झूठे प्रेमी को ऐसा दंड देना उचित था। यदि वह पक्का प्रेमी होता तो अपना सिर कटवाना पसंद करता। धुन का पक्का तो अपने प्रियतम के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। यदि वह मुझसे सिर उतरवाना स्वीकार कर लेता तो मैं इस देश का राज्य उसे सौंप देता। मैं उसका दास हो जाता और वह निर्धन बादशाह बन जाता। प्रत्येक प्रेमी जो किसी में लौ लगाता है वह प्राणों पर खेल जाता है। अंत में बादशाह ने कहा, ई बदा गुफ्तम किता हर बेफुरोग, कम जनत दर इश्के मा लाफे दुरोग। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार, मंतिकुत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 121। अर्थात ये बातें मैंने इसलिए कही हैं ताकि ऐरा गैरा प्रेम का दावा न करें। प्रिय या प्रिया की सुंदरता को कुरूपता में परिवर्तित करना। फारसी सूफी प्रेम कथाओं में सूफी कवियों ने प्रिय या प्रिया को कालोपरांत कुरूप दिखाकर इश्के मजाजी लौकिक प्रेम के प्रति प्रेमी के हृदय में घृणा उत्पन्न करने और उसको इश्के हकीकी अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख करने की भी चिरपरिचित कथानक रूढ़ी का उपयोग किया है। उदाहरणार्थ ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार की निम्न कहानी ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंतिकुत्तर नवल किशोर प्रेस लखनऊ पृष्ठ 143-46 द्रष्टव्य है। एक युवक अत्यंत मेधावी एवं कुशाग्र बुद्धि था। उसने अनतिकाल ही में अनेक विद्याएं सीख लीं। उसके गुरु पर को उस पर बहुत गर्व था। गुरु की एक शशिवदन लड़की थी जो सुंदरता की साकार प्रतिमा थी। एक दिन पृष्ठ संख्या 448 शिष्य की नज़र सहसा उस पर पड़ी तो उस पर जी आ गया। वह विरहाग्नि में संतप्त होकर उन्मत्त सा हो गया। अंततः उसकी वियोग विपन्नावस्था का समाचार गुरु तक पहुँच गया। गुरु ने युवती की नस को छेद कर रक्त निकाल कर एक पात्र में डाल दिया, जिसके कारण उसका मुख पीला पड़ गया और वह सूख कर कांटा हो गई। जब शिष्य ने अस्थि पंजर को देखा तो उसके प्रेम की अग्नि ठंडी पड़ गई। यह जानकर गुरु ने शिष्य से कहा कि तू भी वही है और युवती भी वही, उसमें से रक्त की बूंदें कम हो गई हैं। देख यह पात्र उसके रक्त से भरा पड़ा है। जब यह रक्त युवती के शरीर से निकल आया तो तेरी प्रेमाग्नि भी शांत हो गई। क्या तू इस बिरते पर उसके इश्क का दम भरता था और क्या तेरे इश्क की गर्मी इतनी ही थी? यथार्थतः तू रक्त का प्रेमी था। तदनंतर कहा, तरके सूरत गिर दर इश्के सिफत, ता बतावत आफताबे मारिफत, सूरत जुज खिलत खोने बेश नीस्त, मर्द सूरत मर्द दूर अंदेश नीस्त। ख्वाजा फैदुद्दीन अत्तार मंतिक उत्तर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, पृष्ठ 146। अर्थात इश्के हकीकी को अपनाने के लिए सूरत परस्ती रूप की पूजा को त्याग दे, ताकि दिव्य ज्ञान का सूर्य तुझ पर चमके। रूप केवल रक्त ही का नाम है और रूप का पुजारी दूरदर्शी नहीं कहला सकता। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने भी अपनी मसनवी की सुप्रसिद्ध कथा बादशाह का दासी पर लट्टू होना, उसे खरीद लेना और दासी का अस्वस्थ होना में हकीम के परामर्शानुसार बादशाह ने सुंदरी को स्वर्णकार के हवाले कर दिया और वे 6 मास तक गुलछर्रे उड़ाते रहे और दोनों प्रेम की समस्त तन्मयता के साथ साथ रहते रहे। परंतु जब भोग विलास से सुंदरी का जी भर गया तो हकीम ने स्वर्णकार के लिए ऐसा घोल तैयार किया, पृष्ठ संख्या 449, जिसे पीकर वह प्रतिदिन दुबला पतला होने लगा। रोग के कारण उसका रूप फीका पड़ने लगा और धीरे धीरे युवती का जी उचटने लगा। चूं जे रंजूरे जमाले ऊ नमांद, जाने दुख्तर दर बवाले ऊ नमांद, इश्क हाय कस पैजे पैये रंगे बवद, इश्क न बवद आकिबत नंगे बवद। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1947 ईस्वी, प्रथम भाग, पृष्ठ 24। अर्थात जब रोग के कारण उस स्वर्णकार का सौंदर्य जाता रहा तो सुंदरी का भी प्रेम विषयक दुख काफूर हो गया। जिसका प्रेम केवल रूप पर होता है उसका प्रेम अंततः कुरूप होने पर नहीं रहता और उसे शर्म उठानी पड़ती है। अतः अंत में मौलाना रूम लिखते हैं, इश्के आ जिंदा गुजी को बाकिस्त, वज शराबे जाफ जायत साकिस्त। मसनवी मौलवी मानवी पैराहने यूसुफी, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन 1947 ईस्वी, प्रथम भाग, पृष्ठ 25। अर्थात इश्क उससे कर नहीं जिसको फना, तुझको देता है शराबे जाफ जा प्राणवर्धक एवं रूह को बढ़ाने वाली मदिरा, जिसके द्वारा आध्यात्मिक एवं शारीरिक जीवन स्थिर रहता है। आकाश को कोसना, आकाश को कोसने काटने की कथानक रूढ़ी फारसी कथा साहित्य में अत्यंत सुपरिचित है। फारसी काव्यकारों के अनुसार संसार में जितने अत्याचार हो रहे हैं उनका उत्तरदायित्व आकाश पर ही है, इसलिए वे पानी पी पी कर इसे कोसते हैं। पृष्ठ संख्या 460। सूफी कवियों ने उक्त कथानक रूढ़ी का प्रयोग स्वाभाविक एवं सफल रूप से किया है। उदाहरणार्थ मौलाना जामी कृत यूसुफ जुलेखा में जब नायिका जुलेखा किशोरावस्था से यौनावस्था में पदार्पण कर रही थी तो उसने 3 सपनों में नायक यूसुफ को देखा, परंतु भूल चूक से उसका विवाह मिस्र के वजीर से हो गया। जुलेखा उसको पट गृह के एक छिद्र से देखकर निपट निराश एवं हताश हुई, क्योंकि वह स्वप्न वाला युवक न था। इस सर्ग के प्रारंभ ही में मौलाना जामी द्वारा आकाश को इस प्रकार कोसा गया है, कुहन चरखे मुश अबीदे हुक्का बाजीस्त, पैये आजारे मधुर महिला साजिस्त, बउमीदी नहद बर बेदिले बंद, बुरद आखिर बनो मीदी यश पैवंद, नुमायद मेवाए कामियश अजदूर, धुनद खातिर बना कामियश रंजूर। मौलाना जामी, यूसुफ जुलेखा, नवल किशोर प्रेस, कानपुर, सन 1896, पृष्ठ 94। अर्थात पुराना आकाश एक मक्कार एवं धूर्त एंड्रजालिक है, मानव जाति को दुख देने के लिए कोई न कोई बहाना बना लेता है। यह प्रेमी को पहले तो आशाओं की डोर में बांध देता है, परंतु अंततः उसकी आशाओं पर पानी फेर देता है। क्रूर आकाश लक्ष्य का फल दूर से दिखाता है, परंतु कालोपरांत निराशा से कमर तोड़कर रख देता है। इसी यूसुफ जुलेखा मसनवी में जब हजरत यूसुफ परम धाम को सिधार गए तो प्रेम परायण जुलेखा भी पति की समाधि पर पछाड़ खा खाकर शरीर छोड़ गए। इस अवसर पर कवि आकाश को अत्याचारी ठहराते हुए गिला रूप में लिखता है, फलक बरखेश पेचा अजदाइस्त, पैये आजारे माजोर अजमाइस्त। पृष्ठ संख्या 451। गिरफ्तारेम दर पेचो खमे उ रमीदन चू तवानम असदमे उ न बीनी कस कजु जख्मे न खुर्दा जे सद कस बर यके रहमे न करदा जे जुल्मश हेच कस सालिम न अस्तस्ता उदामी सीना काम जालिम न खस्तस्त। वही पृष्ठ 306-313 इत्यादि। अर्थात आकाश एक लिपटा हुआ अजगर है जो हमें सताने के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है। हम उसके पेचों खम में आबद्ध हैं। उसके फूतकारों से कोई कैसे बच सकता है? तो किसी भी ऐसे पुरुष को ना पाएगा जिसने उससे जख्म न खाया हो। वह 100 व्यक्तियों में से एक पर भी दया नहीं करता। उसके अत्याचार से कोई भी सुरक्षित नहीं है। कौन सा ऐसा वक्षस्थल है जिस पर उसने छुरी न चलाई हो? हाथी और अजगर की कथानक रूढ़ी। निस्संदेह हाथी और अजगर की कथानक रूढ़ी फारसी साहित्य की है। वही प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना, सन 1960 ईस्वी, पृष्ठ 255। इसका विवरण पशु विषयक कथानक रूढ़ी के अंतर्गत देखिए। वायुदूत। फारसी साहित्य में वायु को दूत के रूप में व्यवहित किया गया है। द्रष्टव्य 50 पोएम्स ऑफ हाफिज, संपादक डॉक्टर ए जे आर बेरी, कैम्ब्रिज 1947। अप्सराओं द्वारा नायक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना। यह कथानक रूढ़ी फारसी कवियों के माध्यम से भारत वर्ष में आई। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य, दिल्ली, सन 1955 ईस्वी, पृष्ठ 238, पृष्ठ संख्या 452। इसका विवेचन नायक या नायिका का एक स्थान से दूसरे स्थान तक अप्सराओं आदि द्वारा ले जाया जाना वाली रूढ़ी में देखिए। निष्कर्ष। उपर्युक्त तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी सूफी काव्यों में मसनवी काव्यों की कुछ कथानक रूढ़ियाँ अवश्य मिलती हैं, परंतु इनकी अनेक कथानक रूढ़ियों का मूल स्रोत फारसी साहित्य में नहीं है। इनका मूल प्रायः भारतीय है।